यह प्रवचन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया जयपुर में दिनांक 21/11/2013 स्कंदो अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Mataji's ladies, Shabdarth. Koi padega? Ab Shabdarth padoge? Theek hai, Mataji to karne do. माइक ले लो, माइक
समस्त परिक्लेश जीवन के समस्त क्लेशों का पांत पथिक
पथिक
स्वशरणम अपने धाम में,
अपने धाम में
यथा
जिस प्रकार
अनुवाद भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता क्योंकि उसे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। कृपया दोहराइए भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद महाराज के द्वारा तात्पर्य अच्छा जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था उस प्रकार की भक्ति में सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा मधाई नामक दो पतितों का उद्धार समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था किंतु उपदेश भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं सहर्ष सहन कर लेते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहनी पड़ी तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई खुद का स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुसरण अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना होता है किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। नारद का नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राण आधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि ये आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है तो कभी समुद्र से होकर या कभी पर्वतों को चोटियों से होकर जाता है। निसंदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वह अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट जाता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। प्रभुपाद महाराज के द्वारा तात्पर्य समाप्त।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञानेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मेरा गला अभी भी थोड़ा बैठा हुआ है, तो चार दिन पहले बिल्कुल बैठ गया था, अब आस्ते आस्ते खुल रहा है, तो अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। दूतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम नाम मुंचति भक्त सर्व परिक्लेश पंत स्वा शरणम यथा। इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। ये श्लोक हमें भागवतम के प्रथम स्कंद दूसरे स्कंद में प्राप्त हो रहा है, और ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं शुक्रदेव गोस्वामी। श्रीमद् भागवतम में हमें सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके सहयोग से हम भागवत प्रेम अनुकूल कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा गया है, नस्तप्रेषु अवधेषु नित्यम भगवत सेवया। आप सब मोबाइल फोन बंद करोगे, कभी किसका मोबाइल बजता है, कभी किसका बजता है, मोबाइल फोन बंद करो या साइलेंट मोड। तो इसलिए भागवतम में कहा गया है, नस्तप्रेषु अवधेषु नित्यं भगवत सेवया। भगवती श्लोक है, भक्ति भावती ऐसी। जो व्यक्ति ध्यान से नियमित रूप से भागवतम को सुनेगा, तो उसके हृदय में जो मैल है या जो भौतिक आकर्षण है वो पिघल जाएगा, अंत में समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको उनके केंद्रों में सुबह के समय भागवत का अध्ययन किया जाता है, और शाम के समय किसका गीता का अध्ययन किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बहुत गहरी शिक्षा दी इस भाव से कि इस शुद्ध भक्ति का ज्ञान पूरे विश्व में पहुँचे, और सनातन गोस्वामी उनके भाइयों ने हमें यही ज्ञान दिया है अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु ने ये जो गहरी शिक्षा थी, ये गहरी शिक्षा को संक्षेप कोई घंटी बनाना और रोकेगा, या टेलीफोन बजते रहती है या घंटी बजती क्लास के वक्त एक व्यक्ति को वहां खड़ा होना चाहिए कि क्लास के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने ये जो बड़ी शिक्षा थी उसको पांच श्लोकों में पांच महत्वपूर्ण भावों में प्रस्तुत किया। महाप्रभु ने कहा ये पांच नियमों का पालन करो और पांच नियमों का पालन करोगे तो बिना शंका के भगवान के धाम जा सकोगे। ये पांच क्या थे? पहले था साधु संगत। साधु संगत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में शुद्ध साधु का वर्णन किया जा रहा है, साधु संगत। दूसरा था हरि नाम का उच्चारण। शास्त्र में अनेक मंत्रों का वर्णन है पर ये हरे कृष्ण मंत्र को महामंत्र के रूप में बताया जाता है। दूसरे शब्दों में खड़े दोषे निरे राजन, कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में, क्या है? हरि का नाम। हम भक्तों के मन में कभी ये भाव नहीं होना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र के अलावा हमें दूसरे मंत्रों की आवश्यकता है, ये एक पांचवा नाम अपराध बन जाता है। शास्त्र में कहा गया है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो न सेव न सेव न सेव एवं हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम। प्रभुपाद जी ने जब इस संस्था की स्थापना की तो उन्होंने भक्तों को आदेश दिया था 64 माला दिन में करने का, तो जब भक्त 64 माला नहीं कर पाए तो प्रभुपाद ने कहा 32 माला करो। जब देखा 32 भी नहीं कर पाए कहा 16 और उससे कम नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भक्त के पास समय हो, अधिक समय हो, तो आप 16 से ज़्यादा कर सकते हो, 32 कर सकते हो, 64 कर सकते हो, पर चैतन्य महाप्रभु शास्त्र की शिक्षा के अनुसार ये हरे कृष्ण महामंत्र ही एक साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहला था क्या? साधु संगत। दूसरा था क्या? हरि नाम। तीसरा था भागवतम श्रवणम, भागवतम को सुनना। तो भागवतम को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए और हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हम भागवतम को पढ़ें और सुने। अगर आप किसी हालत मंदिर नहीं आ सकते, घर में रहते हो, तो घर में पढ़ो, घर में सुनो, पर भागवतम को जरूर पढ़ो अगर आप भगवत प्रेम चाहते हो। चौथा क्या था? चौथा किसे पता है? श्रद्धा के साथ भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करना। भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। ये आचार्य विग्रह बिल्कुल प्रमाणिक है। अफसोस की बात है कि भारत में भी कई मायावादी भाव के व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान साकार है। भगवान अपने आप को आचार विग्रह के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस आचार विग्रह भगवान में अंतर है? कोई अंतर नहीं। जिस प्रकार भगवान के नामों में और भगवान में अंतर नहीं, उसी प्रकार भगवान के आचार विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। और हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनमें आप देखते हो कि किस प्रकार इन मूर्तियों ने गवाही दी। साक्षी गोपाल की कथा में आप देखते हो किस प्रकार गोपाल विग्रह चल कर आए अपने ब्राह्मण भक्त की सुरक्षा के लिए। और पांचवा क्या था आदेश? धाम में निवास करना। जयपुर राव का वृंदावन धाम ही है। जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, क्योंकि जब मुसलमानों का हत्याचार हुआ था तो वृंदावन के जो पुजारी थे उनके सामने दो ही उपाय थे। एक था मुर्दों को उठाकर छुपा दिया पृथ्वी के नीचे, जैसे नंद द्वारा मूर्ति को किया और विमानपुरी नंद की स्थापना की। दूसरे उस समय जयपुर में हिंदू राजा थे और मूर्तियों को उठाकर जयपुर में ले आए, इसलिए आपके जयपुर में अब फोन बंद क्यों नहीं करते, नहीं तो क्लास के बाहर जाओ, नहीं तो क्लास के बाहर जाओ, क्लास में आकर दो दो मिनट। और तो इसलिए तो पांच तो इसलिए आप देखते हो कि जयपुर धाम में कई प्रसिद्ध मूर्तियां हैं जिनको जिनकी पूजा गोस्वामी कर रहे थे जो यहाँ आए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू राजा था। पांचवा नियम था धाम में वास करो। और प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है जहां भी हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण हो वो स्थान क्या बन जाता है? वृंदावन धाम। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ये जो इस्कॉन के केंद्र हैं, आज प्रभुपाद जी की कृपा से 700 केंद्र हैं इस्कॉन के सारे विश्व में, अभी 700 पर पहुंच गए हैं। तो ये सारे 700 केंद्र जो हैं जहाँ हरि नाम का उच्चारण हो रहा है वो क्या है? धाम है। तो जहाँ भी रहो वहाँ कृष्णा का गुणगान करो और कृष्णा का प्रचार करो। तो इन पांचों में तीसरा आदेश क्या था? भगवतम का श्रवणम करो। तो अगर हम भक्ति भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है? आज के श्लोक में शुद्ध भक्त का वर्णन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में भगवान की सेवा के अलावा और कोई भाव नहीं होता। और श्री कृष्ण चरणों का श्रवणम कर स्मरण करते हैं उनके मन में एक ही भावना रहती है भगवान को संतुष्ट करने की। तो शुद्ध भक्त क्या हम सब बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? भगवान की इच्छा है सभी शुद्ध भक्त बने। पापा जी कहते थे ये संस्था बनी है सबको शुद्ध भक्त का संदेश देने के लिए। तो जो शुद्ध भक्त है उसका हृदय साफ कैसे हुआ है? उसका हृदय साफ हुआ है भक्ति की विधियों के पालन के द्वारा। भक्ति की विधि हाय बो वाई यू टॉकिंग इन द क्लास क्रेजी। तो भक्ति की विधियों के पालन से हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। तो यहाँ कहा जा रहा है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके उनका हृदय शुद्ध बना है भक्ति योग की शिक्षा के पालन के द्वारा। और क्योंकि उनका हृदय शुद्ध हो गया है भक्ति योग की नियमों के पालन के द्वारा वो भगवान के चरण कमलों को बिल्कुल त्यागना नहीं चाहते, एक पल के लिए भी, उसी में उनकी संतुष्टता है। और यहाँ उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार एक यात्री घर से निकलता है धन कमाने के लिए और धन कमाने के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, पर जब वो घर में लौट के आता है तो उसे क्या संतुष्टता नजर होती है। तो शुद्ध भक्त भगवान के वो हैं जिनके मन में एक ही भाव है, वो क्या भाव? भगवान की सेवा का। तो कभी कभी भक्त कहते हैं हम तो शुद्ध भक्त कभी नहीं बन सकते, हमारे में अनेक त्रुटियां हैं, हमारा बड़ा गहरा भौतिक आकर्षण है, ये तो शुद्ध भक्त प्रकट होते भगवान के धाम से। हम सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करो। ये जो उपदेश दिया जा रहा है शास्त्र में, ये उपदेश है हमारे भौतिक आकर्षण को दूर करने के लिए और अंत में नष्ट करने के लिए। अगर हम ये सोचते रहे नहीं 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 भौतिक आकर्षण बहुत गहरा है, हम तो माया से नहीं बच सकते, तो आप कभी नहीं बचोगे। पर अगर आपकी श्रद्धा है भगवान की वाणी में, भगवान के उपदेश में, और आप इन नियमों का लाभ उठाओ, तो बिना शंका के इनको नष्ट कर सकते हो। देवी से गुना मामा माई मामा माया दुर्दया, भगवान गीता में कहते हैं ये माया का विरोध करना बहुत कठिन है। पर आगे भगवान ये कहते हैं जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वो इस माया का विरोध कर सकता है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है मेरी शरण में आओ। भगवान गीता के अंत में वो कौन सा महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान गीता के सार को प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन सा श्लोक है? सर्वधर्म पढ़कर यह मानेंगे हम तुम सर्व पाप मोक्ष में मास्टर। तो भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्यों चिंता मत करो। तो भगवान के शुद्ध भक्त कई हैं जो नित्य मुक्त रहते हैं। नित्य मुक्त मतलब शुरू से ही बिल्कुल मुक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्री क्षेत्रीय महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी पृथ्वी आचे जैसे नगर अधिग्राम सर्वतः प्रचार और विमोना, दुनिया के हर कोने में यह हरि नाम पहुंचेगा। तो इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए श्री प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे और वो शुरू से ही शुद्ध भक्त थे। उनके पिता का नाम था गौर मोहन दे। पिता के मन में एक ही भाव सदा रहता था मेरा बेटा भगवान का शुद्ध भक्त बने। उनके पिता बकायदा संतों की सेवा करते थे, संतों को निमंत्रण देते थे और जब संतों के घर में ठहर कर जाते थे तो संतों से कहते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का बड़ा शुद्ध भक्त बने। और प्रभुपाद को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं और प्रचार के कार्य में जुड़ने के दौरान अनेक परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, पर वो घबराते नहीं। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दो भक्तों का उदाहरण दिया है। कौन कौन? तीन भक्तों का। कौन कौन भूल गए? हाँ किसका? किसका? जीसस क्राइस्ट, भगवान नित्यानंदा और प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी ने तीन भक्तों का उदाहरण दिया। भगवान नित्यानंदा का आदेश उदाहरण क्यों दिया? क्षेत्रीय महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब क्षेत्रीय महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया नवदेव धाम में, तो जो ब्राह्मण सभा थी वो घबरा गए, क्या निमाई ने शुरू कर दिया हरी नाम, हमारे ब्राह्मणों की कोई कदर ही नहीं रहेगी। तो ब्राह्मणों ने जाकर वहां के नवाब से कहा ये निमाई पंडित ने नया पखंडी धर्म शुरू कर दिया है, इसको बंद करो। और जो मुसलमान थे उन्होंने भी शिकायत की, उन्होंने कहा निमाई पंडित का इतना गहरा प्रभाव है कि अगर हम इसकी आंदोलन को बंद नहीं करेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। एक मुसलमान था जो बार बार शिकायत करता था, रोको रोको निमाई के आंदोलन को, ये तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो नवाब ने कहा तुम बार बार कहते हो रोको 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 निमाई पंडित के आंदोलन को, तो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो, ये क्या बात है? तो उसने कहा ये बात सच है कि जब से मैंने निमाई के द्वारा हरे नाम सुना है, या हरे नाम मेरे जीभ से निकलता ही नहीं, तो चांद काजी श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथियों ने श्रीवास अंगन में अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था, पर महाप्रभु उस समय वहां नहीं थे जबकि चांद काजी ने अपने सिपाहियों को भेजकर सारे मृदंगे तुड़वा दिए थे कि नहीं, और उनको गिरफ्तार कर दिया था और कहा अगर तुम भविष्य में ये हरिनाम को नहीं रोकोगे तो हम तुम सब हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। उन दिनों में मुसलमान बनना या बनाना बड़ा एहसान था, इसीलिए तो मुसलमान की आबादी इतनी तेजी से बढ़ गई। अगर आपने किसी मुसलमान के घर में भोजन भी खा लिया तो मुसलमान बन गए, किसी मुसलमान के नौकरी भी की तो मुसलमान बन गए। जैसे रूपा और सनातन, इन्होंने मुसलमान राजा नवाब हुसैन शाह के राज्य में नौकरी की थी जबरदस्ती। इसके कारण कभी रूपा और सनातन जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि एक समय उन्होंने मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी की थी। तो एक था एक कथा पढ़ते हो सुबुद्धि रॉय की शास्त्रों में, सुबुद्धि रॉय एक समय बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा। उसका एक नौकर था जिसका नाम था हुसैन। तो क्लास उसका एक नौकर था हुसैन, तो चापलूसी करके ये हुसैन धनी बन गया और सुबुदी गरीब था। एक दिन हुसैन के पत्नी ने देखा उनकी पीठ में एक लकीर की निशानी है, ये लकीर की निशानी कैसे? तो उसने कथा सुनाई, मैं सुबुद्धि रॉय के घर में नौकरी करता था, तो एक दिन खेती करते हुए मैंने गलती की, कुआं खोदते हुए तो उसने प्रेम से मारा जिसकी लकीर की निशानी है। उसकी पत्नी ने कहा राजा की, तो अब तो तुम राजा बन गए हो, मार दो उसको। मतलब किसको? सुबुद्धि रॉय को। तो हुसैन शाह ने कहा उसने तो मुझे बेटे जैसा पाला था, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो फिर पति ने कहा ठीक है कम से कम उसे मुसलमान तो बना दो। तो ठीक है ये तो एहसान काम है। तो सुबुद्धि रॉय को बुलाकर अपनी बाल्टी से थोड़ा पानी फेंका, मुसलमान बन गया। अगर किसी मुसलमान की बाल्टी से एक बूंद पानी भी आपके सिर पर आ जाए तो हिंदू समाज आपको बाहर कर देता था। तो सुबुद्धि रॉय क्योंकि मुसलमान बन गए या बना दिया गया, तो घर वालों ने सबने कहा अभी बाहर जाओ, अभी घर में नहीं रह सकते। तो सुबुद्धि रॉय गए बनारस के पंडितों के पास, उनसे पूछने लगे अब मैं क्या करूं, मुझे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया है, समाज कहता है अभी तुम बाहर चलो बाहर जाओ, क्या करना चाहिए। बनारस के पंडितों ने कहा उबलते हुए घी को पीकर आत्महत्या कर लो। फिर चैतन्य महाप्रभु आए वाराणसी में, तो सुबुद्धि रॉय ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा मुझे क्या करना चाहिए। सुबुद्धि महाप्रभु ने कहा वृंदावन जाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और संतों की सेवा करो। तो ये उदाहरण दिया क्या थी समाज की स्थिति। तो चांदकाजी ने कहा कि मैं तुम सबको मुसलमान बना लूंगा। तो महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो कईयों ने उसका विरोध किया। मुसलमानों ने तो किया तो ब्राह्मणों ने भी किया। हमारे कोई 25 साल पहले हमारे भक्त गए थे इंडोनेशिया प्रचार करने के लिए। इंडोनेशिया देश जानते हो ना, इंडोनेशिया में एक समय पूरे वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। तो अमेरिकन भक्त गए थे वहाँ प्रचार करने के लिए। तो हमारे भक्त जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उन्होंने वहाँ जाकर कह दिया लोगों को ब्राह्मण शराब नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, ये लोग जो ब्राह्मण हैं, ये हिंदू जो हिंदू व्यक्ति वहाँ दावा कर रहे थे हम ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, शराब पीते हैं ये लोग, सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं। तो इन ब्राह्मणों हिंदू ब्राह्मणों ने सरकार को शिकायत कर दी, ये जो अमेरिकन लोग आए हैं ये ब्राह्मण हिंदू नहीं है, इनको बाहर कर दो। तो कई सालों के लिए हमारी संस्था को इंडोनेशिया में बड़ी कठिनाई हुई थी। क्यों? क्योंकि मुसलमान हमारे हिंदू ने ही शिकायत कर दी कि ये ब्राह्मण नहीं हो। क्यों, क्या था उनका दोष? उनका दोष यही था कि उन्होंने शास्त्रों का असली संदेश दिया कि ब्राह्मण बनना है तो ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार शुरू किया उनके प्रचार को भी कईयों ने विरोध किया। फिर प्रभुपाद जी यहाँ भगवान नित्यानंदा का उदाहरण दे रहे हैं। भगवान नित्यानंदा ने चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, महाप्रभु का उद्देश्य क्या था? पतितों का उद्धार करने के लिए। एक दिन चैतन्य महाप्रभु एकांत में बैठे थे और गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे। तो गोपियों का जो भाव है ये बहुत ऊंचा भाव है। आप गोपियों की सेवा की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गोपियों के मन में एक ही भाव था, सदा भगवान की सेवा। तो एक विद्यार्थी वहां बैठा था, उसने कहा क्या गोपी 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 बोल रहे हो, हरे कृष्ण बोलो, गोपी गोपी बोलने में क्या लाभ है। तो महाप्रभु को जरा गुस्सा आया कि मेरा भाव वो नहीं समझ पा रहा। तो महाप्रभु उसके पीछे दौड़े उसको जरा मारने के लिए। ये विद्यार्थी भाग के लौट गया जहाँ की संस्कृत के और विद्यार्थी उसके क्लास के व्यक्ति थे। तो दौड़ते दौड़ते आया क्लास में, तो दूसरे विद्यार्थियों ने पूछा दौड़ते क्यों आ रहे हो भाई, क्या क्या है? मेरे जान को खतरा है, ये निमाई पंडित जिसको हम लोग इतना आदर देते हैं मेरा पीछा कर रहा है लकड़ी के साथ। क्यों? वो गोपी 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 कह रहा था और मैंने कहा कि हरे कृष्ण बोलो, गोपी गोपी बोलने का क्या फायदा है। तो फिर सारे विद्यार्थी आगे आए और महाप्रभु को कहने लगे अगर वो भविष्य में तुमने ऐसा पीछा किया हमारे विद्यार्थियों को तो हम देख लेंगे तुम्हें। तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे मैं तो प्रकट हुआ हूँ पतितों का उद्धार करने के लिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दयापूर्ण मोरे, तो मैं बिना के दयालु जगत संसार है। आप सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार हो, आप प्रकट किए हो, क्यों किए हुए हो, परिस्थितों का उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु ने सोचा, मैं तो प्रकट हुआ हूँ परिस्थितों का उद्धार करने के लिए, पर यहाँ लोग अपराध कर रहे हैं, मेरे से लड़ने आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं अगर तुमने भविष्य में ऐसे किया तो अब देख लेंगे। फिर महाप्रभु ने निर्णय किया कि अब मुझे संन्यास ग्रहण करने दो, क्योंकि भारतीय समाज में सन्यासी की हर व्यक्ति सन्यासी को आदर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए परिजनों का उद्धार करने के लिए। डू दी चाइनीज डिवोटीज अंडरस्टैंड इंग्लिश? यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? So if you sit in one corner, somebody can translate from Hindi to English. Pancharatna, you understand Hindi? Then you can sit in the corner. No, sit in the corner in the back. Then you can do it more. Gopal Hari can do it. चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय किया कि मुझे संन्यास लेने दो, इसलिए परिजनों को धाक ले। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो फिर महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद को भेजा क्या घर घर जाकर करने के लिए प्रचार करने के लिए। तो वह ये नहीं कि भगवान के भक्तों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के जीवन को देखो तो आप देखोगे प्रभुपाद जी के जीवन में कितना संघर्ष था। प्रभुपाद जी को लगभग 25 साल के लिए इतना गहरा संघर्ष करना पड़ा, किस लिए? सेवा अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए। गुरु का क्या आदेश था? क्या आदेश था चैतन्य महाप्रभु गुरु का आदेश यह था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को कहाँ? पश्चिम देशों में। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को प्रचारकों की स्थापना करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय प्रभुपाद जी एक श्रीमती मुरार जी को मिलने गए थे बॉम्बे में, उनसे कि प्रभुपाद जी बॉम्बे गए थे, किसी ने प्रभुपाद जी से कहा यहाँ एक बहुत धनी औरत है जो कि संतों का सहयोग करती है। तो प्रभुपाद जी गए श्रीमती मुरार जी को दफ्तर में मिलने के लिए, उनके सेक्रेटरी ने कह दिया सॉरी शी इज वेरी बिजी, बड़ी व्यस्त है, आपको समय नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं इस बिल्डिंग की सीढ़ियों में बैठ जाता हूँ, क्योंकि शाम को उसको निकलना तो यहाँ से ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी 5 घंटे के लिए सीढ़ियों में बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे। तो शाम को जब वो घर जा रही थी, उसे देखा एक साधु सीढ़ियों में बैठा है उसी बिल्डिंग में। तो प्रभुपाद जी ने उस श्रीमती महाराज जी ने पूछा क्या? तो श्रीमती महाराज जी ने पूछा अपने सेक्रेटरी से कौन है ये साधु? तो सेक्रेटरी ने कहा ये 5 घंटे से आपकी राह देख रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं। फिर प्रभुपाद जी को श्रीमती महाराज जी मिली और उन्होंने 4 घंटों 5 फी छापने का पूरा ध्यान दे दिया। तो आप प्रभुपाद जी के लीला में तो पढ़ते हो किस प्रकार प्रभुपाद जी को भी संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ ये और प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज का क्या दोष था? उनका केवल एक ही दोष था. क्या क्या दोष था? भगवान के प्रति सेवा भाव ना थी, यही दोष था, और कोई दोष नहीं था. प्रहलाद महाराज बड़ी कठिन परिस्थितियों में प्रचार कर रहे थे. उनके पिता ने चारों तरफ से घेर लिया था, अपने जासूस रखे थे, जब भी प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे थे. तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय शुद्ध हो गया है भक्ति के पालन से. और ये शुद्ध भक्त जो है कभी भी भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ना चाहते. तो हम भगवान के चरण कमलों को छोड़ना चाहते हैं कब? जब हमारे हृदय में मैल हो. पर हमारे हृदय में ये मैल किस रूप से प्रस्तुत होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के कारण. इनको हिंदी में अनर्थास कहा जाता है. संस्कृत में अनर्था का अर्थ है जिस कार्य की आवश्यकता नहीं. और इन अनर्थस के कारण हम भगवान के असली रूप को नहीं समझ पाते. हम भगवान के अनेक गुणों को नहीं समझ पाते. हम भगवान के नामों के प्रति आकर्षित नहीं होते. तो ये अनर्थ जो है दूर हो सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? आपको ऊंचा बुखार है, बीमारी है, ठीक हो सकती है या नहीं? हो सकती है. तो ये अनर्थ को कैसे कैसे अनर्थ दूर होंगे? क्या है वो उपाय? क्या है उपाय? इस विषय में रूपक गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं. कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु. सबसे पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हमने परम भगवान के शरणागत होना है. और जब आपके मन में ये श्रद्धा होगी तथा साधु, तो आपको भगवान साधु संगत देंगे. जैसे कि आप सबका अनुभव होगा कि आपके हृदय में इच्छा थी किसी प्रकार की भक्ति में जुड़ने के लिए, कि आप भक्ति में जुड़े हो. रूप गोस्वामी कहते हैं तो श्रद्धा हो तो साधु संगत मिलती है. जब आप साधु की संगत में आते हो, जब आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा? भजन क्रिया. आपको ये शिक्षा मिलती है हरि नाम को उच्चारण करो. आप इस्कॉन के किसी केंद्र में भी जा सकते हो सारे विश्व में. आपको क्या हर केंद्र में अलग संदेश मिलता है? हाँ, जयपुर में एक संदेश, दिल्ली में दूसरा संदेश, वृंदावन में तीसरा संदेश, लंदन में चौथा संदेश. नहीं, हर जगह आपको एक ही संदेश मिलता है. हर जगह एक ही शेड्यूल है. जैसे आपके यहाँ 4:30 बजे आरती होती है, विश्व के हर कोने में 4:30 बजे आरती होती है. उल्टा मॉस्को में 4:15 की आरती होती है. और हमारे मणिपुर के टेम्पल में, मणिपुर नाम सुना है, वहाँ 3:30 बजे आरती होती है. 3:30 बजे आरती है क्योंकि वहाँ सनराइज बहुत जल्दी है. तो जो साधु है वो एक ही संदेश देता है. क्यों? क्योंकि ये संदेश शास्त्रों का है. जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो उपदेश भी हमें दिया वो 100% निर्भर है शास्त्रों पर. अपने मन का उन्होंने हमें कोई उपदेश नहीं दिया. तो अधोषदार अथो तथा साधु। तो जब साधु द्वारा आपको एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जब आप इसका पालन करना आरंभ करते हो, जब क्या परिणाम होता है? अनर्था निवृत्ति। जो आपके अनर्थ हैं ये पिघलने लगते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। तो ये अगर हम ये हरि नाम का लाभ उठाएं तो सबके अनर्थ पिघल सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं हम तो बहुत पतित हैं, हमारे अनर्थ कभी नहीं निकलेंगे, दूसरों के निकल जाएंगे। नहीं, आपके भी निकलेंगे। ये जो दवाई दी जा रही है, ये कहां से बन के आ रही है? मेड इन वैकुंठा। आप जब दवाई खरीदते हो, कोई दवाई अगर अमेरिका से आ रही है, तो आपके मन में यह बहम आ जाता है, हाँ इसका इलाज ज्यादा अच्छा हो रहा है ना। तो राइट डॉक्टर। तो ये जो हरि नाम है, ये कहाँ से आ रहा है? वैकुंठ धाम से। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जीव जा को प्रार्थना में कहते हैं, भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए एक ही चीज की भीख मांगो। क्या? हरि नाम की भीख मांगो, क्योंकि हरि नाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से। इस विषय में हमारे संतों ने कहा है कि हरि नाम के उच्चारण का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर हम यह हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहें तो हमें ध्यान पूर्वक जाप करना चाहिए। हरि नाम का जाप सावधानी और ध्यान से करोगे तो अधिक लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर आप दवाई को नुस्खे के अनुसार लोगे तो उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो हरि नाम का उच्चारण हम तीन परिस्थितियों में कर सकते हैं। एक है नाम अपराध, जप कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। दूसरा है नाम भाषा, जप कर रहे हैं पर हम अपराधों से बच रहे हैं। जैसे हम इस्कॉन मंदिरों में रोज 10 नाम अपराधों का गुणगान करते हैं। तो तीसरा है शुद्ध नाम। तो कम से कम जब हम जाप करने बैठते हैं, कई बार भक्त पूछते हैं क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान पूर्वक जाप? मन तो हमारा भटकते रहता है। मन भटकता रहे तो भटकने दो, पर इतना तो आप निर्णय कर सकते हो कि जब आप जाप करने बैठते हो तो केवल जाप पर ध्यान दीजिए, यानी जब भी कर रहे हो और 10 और काम भी कर रहे हो, एक तरह से जाप दूसरी तरह से भौतिक चर्चा। और जैसे कि आप जब प्रसाद खाने बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है कोई बार बार टोका टाकी करें? आप सारा दिन व्रत रखा है आपने, अब प्रसाद खा रहे हो और कोई व्यक्ति आता है, प्रभु ये काम जानते हो, ये आप क्या कहते हो? हाँ शांति में खाने दो, बाद में आना है ना। तो जब आप 16 माला का जाप करने बैठते हो, आपका भाव होना चाहिए अब ये माला का जाप करूँ शांति से, फिर दूसरी चर्चा। और आप देखोगे कि अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करने का प्रयास करोगे तो तेजी के साथ चेत दर्पण मार्जनम चेत दर्पण मार्जनम का मतलब हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ यह है कि हृदय में जो मैल है, ये मैल क्या हो जाता है? दूर हो जाती है। तो यहाँ कहा गया है आज के इस श्लोक में कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि भक्तियों के पालन से उन्होंने भौतिक आकर्षण को नष्ट किया है, इसलिए उनके मन में सदा यही भाव रहता है कि मैं सदा भगवान का चिंतन करो और वो भगवान के चरण कमलों का स्मरण किसी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता। तो ये इस स्थिति पर हम सब पहुंच सकते हैं अगर हम भक्ति योग की विधियों का पालन करें। भक्ति योग की जो विधियां हैं ये सबके लिए है, ये नहीं कि एक व्यक्ति को एक ज्ञान दिया जा रहा है दूसरे व्यक्ति को दूसरा ज्ञान। एक समय था जब अमेरिका में महर्षि योगी की संस्था काफी प्रसिद्ध हो गई थी, तो वो लोगों से $40 लेते थे कुछ कीमत और एक मंत्र देते थे, और हर एक व्यक्ति को ये कहा जाता था, ये मंत्र किसको नहीं बोला, गुप्त मंत्र है स्पेशली फॉर यू। तो दो मित्र थे जिन्होंने दीक्षा लेकर ये निर्णय किया, चलो देखने तो कौन सा मंत्र मिला इन दोनों को। और दोनों ने देखा कि दोनों को एक ही मंत्र दिया गया था। हम ये नहीं कि किसको कुछ मंत्र दे रहे किसको कुछ मंत्र दे रहे शास्त्र में क्या है ये है ना तो भक्तियों के जो नियम है, जैसे कि हम इस्कॉन में चार नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन में तो बहुत से बंधन है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शन। देखो हमारी गुरु इतने दयालु है, पूरी छूट दी हुई है। तो ये नियम है, ये हमारे सुधार के लिए है, और ये इसलिए है क्योंकि हमारे आचार्यों ने इन नियमों पर बल दिया गया है। और हरि नाम के उच्चारण से शक्ति आती है इन नियमों का पालन करने के लिए। तो रूपक गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले कदम है आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे भगवान का संदेश है। ये श्रद्धा होगी तो आपको साधु संगत मिलेगा, साधु संगत मिलेगा तो आपको असली ज्ञान मिलेगा। असली ज्ञान का पालन करोगे तो अनर्था निवृत्ति आएगी, और जब आप पालन करते जाओगे भक्तियों की विधियों का तो अनर्था निवृत्ति के बाद क्या आएगा, निष्ठा आएगी, और अंत में आकर्षण, और फिर भगवत प्रेम। तो हमारा सौभाग्य यह है कि श्रील प्रभुपाद जी और संतों ने हमें पूरा उपदेश दिया है, हमें केवल इनका लाभ उठाना चाहिए। हमें किसी क्षेत्र में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, सारा रिसर्च प्रभुपाद ने किया है। तो संक्षेप में आज के श्लोक में शुद्ध भक्त का गुणगान किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है भगवान के शुद्ध भक्त वो हैं जिनका हृदय कपट भौतिक आकर्षण से बच गया है, और क्योंकि भौतिक आकर्षण नष्ट किया गया है अनर्थ निवृत्ति के माध्यम से, इसलिए इन भक्तों के मन में सदा एक ही भाव रहता है, क्या, कृष्ण सेवा। इसलिए रूपक गोस्वामी जी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को मत छोड़ो। दूसरे शब्दों में कृष्ण भक्ति की सफलता के लिए हमें कई बार कई चीजों को त्यागना पड़ता है, ये त्यागो ये त्यागो ये त्यागो, तो कई बार हम हिचकते हैं, पर रूपक गोस्वामी कहते हैं जो त्यागना है त्यागो। और श्रीधर महाराज कहते हैं कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति है, इस मार्ग में इतनी सुरक्षा है कि अगर आप आंख बंद करके दौड़ोगे तो भी गिरोगे नहीं। ये तो साधारण स्थिति में आंख बंद करके दौड़ोगे तो गिरने की अच्छी संभावना है। इसी तरह स्वामी कहते हैं आंख बंद करके भी दौड़ोगे तो गिरोगे नहीं, क्यों? क्योंकि भक्ति योग में इतनी शक्ति है। तो आज के श्लोक में यही भाव प्रकट किया जा रहा है कि क्योंकि प्योर शुद्ध भक्त वो शुद्ध बन गया है, कैसे? भक्तियों की विधियों के पालन के द्वारा। आज इस कर्म में हजारों भक्त हैं जो दिन रात प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने उस वातावरण में जन्म लिया था या कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, जहाँ बचपन से जुड़े हुए थे पाप के कार्य में, आज महात्मा बन गए हैं, कैसे? भक्तियों की विधियों के पालन के द्वारा। तो ये जो गुरु परंपरा द्वारा जो शिक्षा आ रही है, बिना शंका के हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो पापा जी तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं, यात्री जो घर से निकलता है धन कमाने के लिए, अनेक परिस्थितियों का सामना करता है कि धन कमाने के लिए, तो जब वो बड़ी मेहनत करके घर लौटता है तो क्या महसूस होता है? शांति। तो जो व्यक्ति भौतिक संस्कार संसार में संघर्ष ही संघर्ष है, चिंता ही चिंता, कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश, जो व्यक्ति अपने आप को इन कष्टों से बचाना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भक्तियों को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तियों को स्वीकार करता है, भक्तियों के पालन से भौतिक आकर्षण कमजोर होने लगता है और अंत में नष्ट हो जाता है, और फिर उसके मन में क्या भाव होती है? सेवा सेवा सेवा। ये नहीं कि भक्ति का ये परिणाम है अब सेवा बंद करो, नहीं। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्ति की विधियों का पालन करें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? 5 मिनट के लिए प्रश्न के लिए। हाँ पूछे। क्या I'm sorry, मैं समझा नहीं। नहीं, हम लोग प्रिटेंडर नहीं बन रहे। आप प्रिटेंडर जब बनोगे, जब खिलाओगे, जब आप ऊपर से तो साधु के वस्त्र पहनो, अंदर से सब उल्टा काम करो। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में, वो है नाटक, वो है ढोंगीपन। अगर आप ईमानदारी से माला का जाप कर रहे हो, नियमों का पालन कर रहे हो और भगवान की शिक्षा का पालन कर रहे हो, तो फिर आप पखंडी नहीं, फिर आप भगवान के आदेश का उपयोग कर रहे हो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए। ये जो इसको के भक्तों को नियम दिए जाते हैं, ये नियम दिए जाते हैं किस लिए? हृदय की मैल को दूर करने के लिए, समझे? फिर आप समझो ब्रह्मचारी के कपड़े पहन रहे हो, सन्यासी के कपड़े पहन रहे हो और गलत काम कर रहे हो छुप छुप कर, फिर ये है पखंड। मन इंद्रियों से संघर्ष हमेशा रहेगा, पर हमें भगवान की शिक्षा के आधार पर इनको वश में लाना है। और कोई क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? Any questions from Chinese devotees? These are Chinese devotees there. Chaitanya Mahaprabhu ji ki bhavishyavani thi, vishw ke har kone mein hari naam pahunchega. Aaj Prabhupada ji ke prayas se har kone mein pahunch gaya hai. Hamare Mayapur dham mein koi 2000 videshi bhakt rehte hain, jo ki 70 alag deshon se hain. वो फुल टाइम रहते हैं वहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु जी के पास है आज हरि नाम का उच्चारण विश्व के हर कोने में हो रहा है। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन?
When we come to devotional service, then like initially it's said that so sukham kartuma pe, so we slowly progresses and sometimes we become stagnant in devotional service and we don't want to come out of this zone.
Can you repeat your question?
Yes. Jis prakar hum bhakti mein aate hain shikh kro mein, to jaise ye process to sukham kartuma usme jaye to process hote, par jaise hum thode din baad hum stagnant ho jate
repeat the question in English also.
When we are introduced to devotional service, then initially we feel joyful, but after that we become stagnant. We become feeling, not very stagnant, we don't progress. So how we can come out of this mentality?
Yeah, I understand. Should I reply in Hindi or English? तो कई बार हम शुरुआत में बड़े उत्साहित होते हैं और बाद में उत्साह ये कम हो जाता है। इसमें दोष किसका है? क्या शिक्षा में दोष है या हमारे में, या दवाई में दोष है या मरीज में या डॉक्टर में? तो डॉक्टर में कोई दोष नहीं, हमारे पहले डॉक्टर हैं भगवान श्री कृष्ण, और जो उनके प्रतिनिधि उनका शिक्षा दे रहे हैं वो तो आपको यथारूप शिक्षा दे रहे हैं। पर मरीज जब दवाई का उपयोग नहीं करता नुस्खे के अनुसार, जब हमें रिलैप्स हो जाती है, जैसे नियम है 16 माला रोज करो, हमारे के जाप में ढीले हो जाते हैं। नियम है ठीक समय पर जागो, मंगल आरती करो, मंगल मंदिर में नहीं कर सकते घर में करो। हम उठते हैं 8 बजे रोज, 4 नियमों का पालन हम नहीं करते, तो ये है कारण जिसके कारण हम ढीले हो जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि कभी एक मरीज दवाई ले रहा है, फिर सोचता है अब तो मैं ठीक हो गया, दवाई लेने की जरूरत नहीं, फिर से बीमार हो जाता है। तो हमें दवाई लेने की आवश्यकता है अंत तक। हरिदास ठाकुर दिन में 3 8 बार जाप करते थे, महाप्रभु को सूचना मिली उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महाप्रभु ने कहा तुम जाप कम कर सकते हो, हरिदास ने कहा नहीं, ये मेरा मेरी बीमारी है, मैं कम करना चाहता हूँ, उन्होंने नहीं किया। तो हमें भक्ति की विधियों का पालन हर स्थिति में करना चाहिए। फिर आप कभी भी फिर आप हमेशा उत्साहित रहोगे। आपकी भक्ति योग में बहुत कम रुचि है, टेलीफोन के बगैर रह ही नहीं सकते आप। तो जैसे आप जानते हो ये ग्रंथों के वितरण का समय है, हमारे भक्त सारे विश्व में प्रयास करते हैं ग्रंथों को बांटने के लिए, आप जानते हो ना। और प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बहुत बल दिया। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है? दिव्य ज्ञान। तो सारे विश्व में, उन देशों में भी जहाँ अधिक ठंड है, हमारे भक्त प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए। आप जय आप में से कितने भक्त हो जो ये मैराथन की सेवा में पहले जुड़ चुके हो? तो ये निवेदन था, ये साल भी आप सब जुड़िए। पिछले साल आप भक्तों ने कितनी गीता बांटी थी, ये साल भी जुड़िए। आप लोगों से निवेदन कर सकते हो, स्पॉन्सर करो गीता, कई लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो हम जेलों में बांट सकते हैं, कॉलेजेस में बांट सकते हैं, और अनेक विद्यार्थियों को बाहर बांट सकते हैं। अगर हम प्रयास करें प्राप्त हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकोगे। इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए आप सब भक्त कैसे बने हो, आप कहोगे किसी न किसी ने मुझे प्रचार किया, किसी न किसी ने ग्रंथ दिया। तो जैसे हम सौभाग्यशाली बने हैं, हमें दूसरों को भी सौभाग्यशाली बनाना है। आप भक्तों से खास निवेदन है, सब प्रयास कीजिए अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों का वितरण करने के लिए और इन ग्रंथों को बांटने के लिए। सब तैयार हो, सब सहयोग। आप ऐसे कौन कौन से भक्त आ रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर में जोड़ने के लिए? आप लोग नहीं, सब जुड़िए। प्रभुपाद जी कहते थे जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। आप माताओं भी करोगे, सब करते हो। दिल्ली में हमारी माताएं घर घर जाती हैं। ओके, प्रभुपाद जी ने कहा मैराथन मीन्स लेस स्लीपिंग लेस ईटिंग। मैराथन के महीने में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक माता में प्रचार की सेवा में जुड़े और किससे बचे, कम सोएं और कम भोजन करें। तो सब जुड़ोगे मैराथन में? आप सब जुड़ते हो। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। Thank you.